इनके दोनों के द्वंद में श्री बलवान महान लिंग चले हमारे घर। अब ये युग सार का आ गया है। सार माने होता है संक्षिप्त कथन, जो ही चीज पहले विस्तार से कही गई है उसे हम संक्षेप में प्रस्तुत कर दें, क्योंकि दुनिया की दौड़ बहुत तेज हो गई है। इस तेज दौड़ वाली दुनिया में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे पूरा बड़े बड़े लंबे लंबे ग्रंथों को पढ़ें। बड़े बड़े ग्रंथों को देखकर उनकी हिम्मत ही नहीं होती है उन्हें हाथ लगाने की। ऐसे लोगों के लिए उन्हें उन्हीं चीजों में, जैसे बचना में जो छपे गुरुदेव श्री के, वे सब प्रवचनों में से ही निकाल निकाल के छापे गए, तो वे भी एक तरह से सारे ही थे ना, तो पूरे प्रवचन नहीं थे, उन्हीं के अंश छापे गए थे। अब फिर भी साल में साथ, अब क्या करें, वो भी इतने बड़े बड़े हो गए। मैंने उदाहरण दिया था लक्ष्मीदान कौमदी कौमदी का, अपने न्याय शास्त्र में ऐसा हुआ है, ग्रंथों की टीकाएं लिखने की परंपरा से तो सारी दुनिया परिचित है कि भाई तत्वार्थ सूत्र लिखा गया तो तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं सर्वार सिद्धि फिर राजवार्तिक फिर श्लोक वार्तिक ये सब लिखे गए, तो इस शैली से हम परिचित हैं। ये दूसरी शैली, ये सार वाली शैली, मोक्ष मात्र का सार, का सार समय सार का सार, ये सार वाली शैली का उदय कहां से हुआ? मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं वे अपना माथा मारे, पूछूंगा नहीं। ये कोई हमने नई पैदा की है किसी ने, ऐसा उसे पढ़ो परीक्षा मुख सूत्र को। परीक्षा मुख तत्वार्थ सूत्र सिद्धांत का सूत्र ग्रंथ है और परीक्षा मुख सूत्र न्याय का सूत्र ग्रंथ है। लेकिन वो खुद ही लिखते हैं, अकलं के बचो मोदो एन धीमता। जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने अकलंक के वचनों को, वचन रूपी समुद्रों को मथ कर उसमें का जो सार निकाल कर ये परीक्षा मुख सूत्र बनाया है, उस माणिक्य नंदी आचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो माणिक्य नंदिने। अब तो याद आ गया होगा कहाँ का ये छंद है। रत्नमाला अनंत वीर आचार्य की परीक्षा मुख सूत्र की टीका है, जैसी टीका तत्वा सूत्र की पूज्यपाद की सर्वार सिद्धि है वैसी, और जैसे अकलंक देव का राजवार्तिक है वैसी उसी परीक्षा मुख की टीका प्रभाचंद्र की प्रमेय कमल मार्तन है, उसी स्टाइल की। और वो कहते हैं अनंत वीर कि मैं उस माणिक्य नंदी माने परीक्षा मुख सूत्र के बनाने वाले, मैं उस माणिक्य नंदी को नमस्कार करता हूँ जिसने अकलंक के वचन रूपी समुद्र को मंथन करके उसमें से जो मणियां निकाली, माणिक्य निकाले और परीक्षा मुख सूत्र बनाया, उसमें उस माणिक्य नंदी आचार्य को मैं नमस्कार करता। ये परंपरा परीक्षा मुख सूत्र से शुरू हुई, और भी पीछे जा सकते हैं अपन खोज करेंगे तो। ये आप लोग जानते हो, आप लोगों को जानने की जरूरत भी नहीं है, जान ले तो अच्छी बात है। न्याय शास्त्र के इस आरंभकर्ता जो आचार्य है वो समंतभद्र है, और न्याय शास्त्र की प्रतिष्ठा को प्राप्त कराने वाले जो आचार्य हैं, प्रतिष्ठापक आचार्य, प्रतिष्ठापक माने उसको उतनी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई थी तो उसे प्रतिष्ठित किया, प्रतिष्ठित करने से मूर्ति पूज हो जाती है, वो काम किया अखिलंग देव ने आठवीं शताब्दी में, पहले दूसरी शताब्दी में किया था समंत वदन में, फिर आठवीं में वो बीच में भी हुआ होगा, लेकिन अखिलंग देव ने उसे स्थापित कर दिया। फिर उसे टॉप पर पहुंचाने का काम किया आचार्य विद्यानंदी ने, कौन विद्यानंदी, अश्वश्री के करता, श्लोक वार्तिक के करता। तो न्याय के तीन आचार्य हैं, कौन कौन, समंत भद्र, अकलंक और विद्यानंदी। माणिक नंदी ने तो जब अकलंक का बहुत विस्तार से चीज आ गई ना, तो उसका संक्षिप्तीकरण किया और फिर लोगों ने कहा बहुत ही संक्षिप्त हो गया, तो फिर उस पर टीकाएं शुरू हो गई। क्या तो टीकाएं करना कोई बुरी बात नहीं है, दुर्भावना से करना बुरी बात है, उस चीज को प्रकाशित करना वो तो अच्छी चीज है, समझे ना। तो इस तरह से ये परंपरा हमेशा चलती रही है, ये कोई अद्भुत नहीं है, ये जिस तरह के श्रोता होते हैं उन तरह से श्रोताओं की उपयोगिता के लिए ये आवश्यक है करना है ना, और ये इस प्रक्रिया का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए। कोई भी ये काम करता है तो उसने विषय बार कर दिए, अब आप कहाँ जाएंगे, क्यों अब कहाँ जाएंगे छोड़ने के लिए। जो जो विषय बहुत चर्चित होते हैं उन विषयों पर स्वामी जी ने क्या कहा है उसको उद्धृत करके हमें सहजता से उपलब्ध करा देना, ये बहुत बड़ा योगदान है। मेरे से बहुत लोग कई जगह कहते हैं कि आप एक सुपर प्रकाशक पर एक किताब लिखो, कोई जरूरत नहीं, ऐसा कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये हमने जबरदस्ती उसे इतना टूल देकर बना दिया है, और जहां जहां हमने साहित्य लिखा है वो ऐसा स्थान जहां जरूरत है वो आ गई है क्या, और ये आगे की पीढ़ी यदि जरूरत समझेगी तो पूज गुरुदेव श्री के वचनामृतों को सुपर प्रकाशक के बारे में उन्होंने क्या क्या कहां कहां कहा है निकाल के प्रस्तुत कर देगी है? और किसी दूसरे को महसूस होगी तो वो हमारे साहित्य में से निकाल निकाल के सुपर प्रकाशक के बोल निकाल के ये गलत कर देगा क्या। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब उसकी इतनी आवश्यकता महसूस होगी जगत को तो जगत ऐसा काम करेगा, हमें अभी ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं होती है, इसलिए हमको जरूर विकल्प नहीं आता कि इस तरह ऐसा कोई काम किया जाए। इन परंपराओं का स्वागत करना चाहिए और गुरुदेव श्री जितने जिन जिन माध्यमों से अधिकतम लोगों के पास पहुंचे उस हरेक माध्यम का हमें स्वागत करना चाहिए। अभी अपना प्रकरण चल रहा है ये जो अपन पाठ करते हैं ना, कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा शुरू की थी, तो पहले के दो दिन में मैंने जहां से गाथाएं शुरू की थी कहां से की थी 84-85 है, तो उसके पहले की 69 गाथा से लेके वहां तक का सार बताया था, और फिर अपन ने आगे बात शुरू करी है। और रोजाना पाठ कराने का उद्देश्य ये है कि वो सारी विषय वस्तु 69वीं गाथा से और यहाँ तक कि आपके दिमाग में एक जगह रिपीट हो जाए, अत्यंत सरल भाषा में वो बात पूरी आई है, और जो आदमी उसको ध्यान से सुनेगा और पढ़ेगा उसको हम कहाँ खड़े हैं कहाँ बात चल रही है उसके ख्याल में अवश्य आ जाएगी। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो पाठ हो रहा होगा पर बाद में चलेंगे, और पाठ जब हो रहा हो तब भी उसे बहुत उपयोग लगा करके सुनना चाहिए। तो हमको रोजाना फिर वहां से बात शुरू नहीं करनी पड़े क्या, अभी अपना अपना क्या क्या निकल गया और क्या क्या बात आ रही है। अभी अपन गाथा नंबर 89 नवासी को क्या बोलेंगे? न्यासी, नवासी। नवासी भी गाथा पर चर्चा कर रही है, जिसमें अत्यंत सरल भाषा में कहा गया है कि उपमोह इति उपयोग के परिणाम तीन अनादि से जानो उन्हें मिथ्यात्व तो अविरत भाव अर अज्ञान है। इस गाथा का सामान्य अर्थ अपन ने कल किया था और शायद टीका भी पड़ी थी। अब उस पर गुरुदेव सिंह का कोटेशन और उसके बाद मैंने जो सार निकाल करके एक पेज में प्रस्तुत किया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि इस गाथा में क्या कहा है। अब आपके पास एक किताब जिसके पास हो वो निकाल सकता है, नहीं तो वो पढ़ना स्वाध्याय। गाथा में तो मात्र इतना ही कहा गया है कि मोह युक्त होने से आत्मा के अनादि से ही मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम भाव पाया जाता है, किंतु टीका में पहले यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से ही स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य रखती है। अतः आत्मा में स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य है। इसके बाद स्फटिक मणि के उदाहरण से यह समझाया गया है कि यह आत्मा अनादि से मिथ्या दर्शनादि रूप परिणमित हो रहा है। देखो आचार्य की बहुत संकट में है एक तरीके से। मैंने कल ही थोड़ी चर्चा की थी इस पे कि यहाँ तो अब रागादिक है, अभी आत्मा के कहते हैं कि पुद्गल के कहते हैं, पुद्गल के कहते हैं तो एक दृप दूसरे दृप पर करता हो जाता है जो महाअज्ञान है, और आत्मा के करते हैं तो फिर वो आत्मा उनका करता है तो आत्मा को भोक्ता होनी चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं कब से क्या, कब से का सवाल ही नहीं होता है, अनादि से है। अनादि से एक कहने का अर्थ उनका ये है कि वो कर्म ने किए इसका उसके विरुद्ध कुछ तर्क लाना चाहते हैं। वो ये भी कहना चाहते हैं कि स्वभाव नहीं है इसलिए कर्म के उदय से हुए। कर्म चाहे ऐसा कह दो कर्म को श्रेय नहीं देना चाहते हैं, और चाहे ऐसा कह दो कि अपने अपराध को कर्म के नाम नहीं मरना चाहते हैं। श्रेय तो नहीं कह सकते क्योंकि अच्छे काम का होता है श्रेय तो, क्यों? श्रेय तो अच्छे काम का होता है, बुरे काम का तो श्रेय होता नहीं। एक काम तो बुरे हैं इसलिए श्रेय का तो सवाल नहीं है, नहीं? लेकिन अब उन कर्म के नाम पे मर के तो स्वयं स्वच्छंद नहीं होना चाहते। और जैसे ज्ञान का प्रणमन का कर्ता आत्मा है ऐसे ही राग के प्रणमन का कर्ता आत्मा है ये भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि वो उसको दुख कारक है, दुख के रूप में फैलते हैं। यदि वो स्वभाव होता तो वो दुख का कारण कभी नहीं होता है, स्वभाव तो सुख का कारण होता है। मैंने पहले 12 भावनाएं लिखी थी जो खो गई है, और जिनकी पंक्तियां कुछ मुझे याद है उसमें एक पंक्ति मैंने लिखी थी कि अनित्य भावना को जब हम भाते हैं, ये लिखी 57-58 में, जब मेरे भोपाल में ऑपरेशन हुआ था ना अपेंडिक्स का, तब मैंने झरना के मंदिर में बैठ के लिखी थी वो पंक्तियां भोपाल में। कभी तुम कहते हो कि अनित्यता कितने दिन में हम रोते ही रोते हैं, मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मैंने लिखा था कि अनित्यता तो वस्तु का स्वभाव है, हम भी कमजोर पड़ गए, नित्य 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 कहते कहते अनित्यता भी वस्तु का स्वभाव है, हम इसको भूल गए। क्यों हमें भगवान कौन कहता है छापी ठोक के अनित्यता वस्तु का स्वभाव है? लेकिन मेरे दिमाग में प्रश्न उस दिन खड़ा हुआ था, मैंने लिखा था जब अनित्यता वस्तु धर्म है क्यों कर दुख कर हो सकती, जो वस्तु का धर्म है तो दुख कर कैसे हो सकती है, और जब स्वभाव ही दुख कर हो सुखमयी कौन सी हो सकती, जब स्वभाव ही दुख का कारण होगा तो ऐसी कौन सी शक्ति होगी जो सुख का कारण होगी। अगर बहुत सुंदर लिखे थे कम से कम 20 सुंदर, और उनमें ये था कि यदि बेटा आत्मा का अनित्य स्वभाव नहीं होता तो तुम अनंत काल तक निबोध नहीं सड़ते रहते। ये तुम अनित्यता की महिमा से निकले हो, ये प्रणमय स्वभाव है ना जो आत्मा का, उसकी वजह से निबोध से निकले हो। यदि हम अनाज से ही सर्वथा नित्य होते तो जहां जैसे होते वैसे ही होते। अनादि से मोक्ष तो है नहीं, अनादि से तो संसार है, तो संसार नहीं होते। ये तो उस प्रणमन स्वभाव से की वजह से ये हुआ है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा धन्यवाद तो उस प्रणमन स्वभाव को देना चाहिए जिसके पीछे हम सब मुमुक्षु डंडा लेके पड़े हैं। मैं तो नित्य अनादि अनंत अनादि अनंत अनादि अनंत अनादि, कभी ना परिवर्तन होने वाला, कभी ना परिवर्तन होना। ये देवता गुरु की पूजन है जिस 56 में मैंने लिखी थी, उसमें एक पंक्ति आती है कि वो जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो ये जब अपन ने उसमें रखी तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये पंक्ति आप हटा दो तो सारी समाज इसको अपना लेगी, ये पंक्ति इतनी खतरनाक है कि इसे बहुत प्रतिबंध इस पर लग जाता है, क्योंकि लोगों को ये स्वीकार नहीं है चित्त से। तो इस तरह मैंने प्रयास किया भी था, और प्रयास करने में बदले में दूसरी पंक्ति बनाई थी, अध्यात्म वो कौन सी है याद है? ये जगत स्वयं परनमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। ये जगत तो परनमनशील है, ये बदलता नहीं है, ऐसा केवल ज्ञानी ने गाया है नहीं लिखा था। परनमनशीलता भी हमारे विरुद्ध नहीं है क्या? अभी उन रागादिक का कर्ता कौन है सुरेश? अब यहाँ पर आचार्य ये कहना चाहते हैं कि आत्मा है, इसलिए संकट खड़ा हो रहा है और मुमुक्षुओं को भी हो रहा है कि हम तो ये बिल्कुल इनका कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है, और शुरू से ही प्रतिज्ञा कर आए हैं। कौन सी? एको कर्ता चिदेह में कर्म को पादयो मी इत्यज्ञानाम समितिम अभिता करति कर्मा प्रवृत्ति। मंगलाचरण का कलश, एक आत्मा है कर्ता और क्रोध आदि मेरे कर्म हैं, अज्ञानियों की अनादि काल की ये अज्ञानमय प्रवृत्ति है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि काल की है, ये अज्ञान है अज्ञानियों की। अज्ञानम माने ज्ञानियों की नहीं है, ज्ञानियों के जो राग आदि होते हैं उनका कर्ता आत्मा नहीं होता है, कर्ता होता नहीं। मुझे आचार्य गुरुदेव की भाषा कहेंगे कर्ता बनता नहीं है। अच्छा हम कर रहे हैं और हम बने नहीं, हमने तुम्हें एक चांटा मारा और कहीं हम तुमको चांटा मारने की क्रिया के करता नहीं क्यों? तो हम उसकी सजा से बच जाएंगे। तो वो कहते हैं जिनका अकर्ता हम कह रहे हैं वे रागादि उसके हैं ही नहीं, और जिन रागादि का कर्ता वो है उन जिन लागारी रूप वो पर्ण में तो होता है श्रद्धा की दृष्टि में, वो उसको हम गिनते ही नहीं। कुछ गिनते नहीं का क्या मतलब है? आप लोग गेहूं खरीद के और फिर स्टोर में रख देते हैं और फिर भाव बढ़ते हैं तो जब अच्छा भाव मिलता है तब बेचते हैं, क्यों सुरेश जी आप यही करते हैं? तो मैं पूछता हूँ जब उसने स्टोर रूम में आपने रखी, मुनाफा तो जब होगा तब होगा, लेकिन आज से ही घाटा शुरू हो गया, ये कोई नहीं, ये व्यापारियों की समझ में नहीं आया, वो पंडित हुकुमचंद को बुलाना पड़ेगा। उसी दिन से उस वेयर हाउस का किराया शुरू हो गया, क्यों? पैसे का ब्याज शुरू हो गया, क्यों? ये घाटा है या नहीं है? और उसी वक्त उससे क्या दो जाना चूहे जा जाकर उसमें से अनाज खाते हैं तो एक्चुअल दाने भी कम हो रहे हैं। तो ये घाटे का ही काम है। असलियत में तो उतने दाने चूहे खा गए, वो अनाज कम हो ही गया। वो ब्याज न्याय तुम नहीं गिनो तो भी, क्यों तो भी हमें तो मुनाफा हुआ, क्योंकि इसको हम घाटा में गिनते ही नहीं। हम जिस दिन भरते हैं तो हमने ये 1500 रुपया क्विंटल के भाव से लिया तो 1700 गिनते हैं। इतना भाड़ा लगेगा, इतना ब्याज लगेगा, इतना चूहा खा ले जाएंगे, वो उसे काट के हम 1700 समझते हैं। और जब बाजार में भाव 2000 का होता है तब हम समझते हैं 300 का मुनाफा हुआ। हम वो मुनाफा घाटा गिनते ही नहीं है ना। एक दृष्टि तुम्हारी नहीं गिनने से क्या होता है, देश में गेहूं तो कम हुआ, काम जितना दाना वो चूहे खा गए ना, उतना गेहूं कम हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे लोक में भी उस घाटे को घाटा नहीं गिना जाता, वो तो प्रोसीजर है, वो तो हो गई, उससे हम बच ही नहीं सकते। आज खरीदें और आज ही बेचें तो गारंटी से घाटे में जाने वाला है, क्या कहने। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि हम श्रद्धा व्यापारी है, वो जो चारित्र मोह संबंधी राग भाग होता है वो उतना है जितना चूहा गेहूं खा जाते हैं। वो चूहों के खाने से देश में दंगाली नहीं आती, चूहों के खाने की वजह से देश में हुकूमती नहीं फैलती। ये तो हर साल ही खाते हैं, उसकी कीमत उतनी है जिसे हम गिनते नहीं है। ये तो मैंने फाइनल रिजल्ट आपको बता दिया। आचार्य तो धीरे धीरे वहां पहुंचना चाहते हैं। अब वो आचार्य यहाँ कहते हैं भैया कि मिथ्या तो अज्ञान और असंयम, तीन नाम दिए उनने उनके, मिथ्या तो अज्ञान और असंयम, उनने मिथ्यात्व और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या तारत्व नहीं कहा। तो मिथ्यात्व में मिथ्या आ गया ना तीनों। तो कहते तीन परिणाम है मोहयुक्तस्य। अरे मोहयुक्तस्य माने दर्शन मोह से युक्त, क्या दर्शन मोह से युक्त। ये जो तीन परिणाम है श्रद्धा ज्ञान और चरित्र के, ये अनादि से ही इस जीव को है। ये नहीं कहा कि इस मिथ्यात् कर्म के उदय से हुई है। इसके पीछे क्या रहस्य है, कि है जहां वे पहुंचना चाहते हैं ये कहेंगे तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हम डॉक्टरों से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो हमको जो हार्ट की बीमारी भई है तो ये बीमारी हुई कौन सी गलती से है। तो हमें किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि तुमने बहुत घी खाया, ये नहीं कहा कि तुमने मीठा खाया, ये नहीं कहा कि तुमने बहुत दौड़ धूप करी, ये नहीं कहा कि तुमने बहुत चिंता करी। तुमको कहा होगा, हमको नहीं कहा। तो आप क्यों पूछते हैं, बस हो गया, हमने दवाई बता दी, इलाज बता दी, करो झगड़ा खत्म। हम इसलिए पूछते हैं कि हमारी गलती से हुआ हो तो हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करें, इसलिए हम पूछते हैं। बताना पड़ेगा आपको कि आपने कोई गलती नहीं की। तो हमें क्यों हुआ कि एक बाई बर्थ, एक जिसे क्या बोलते हैं जेनेटिक हेरिडिटी वंशानुगत है, वहां से आई है। इसलिए आप कोई अंदर से वो मत करो कि आपने गलती की है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मैं अमेरिका में बहुत पहले से वो हुए ना ऑपरेशन वो दला स्टेंट, तो हम वहीं से अपने घर से खाना आता था तो ऐसी मूंग की दाल ऐसे ऐसे कुछ आता था जैसा अपन खाते हैं बिना मिर्ची का बिना उसका जैसे। तो डॉक्टर आया तो हमने बोला कि डॉक्टर साहब वो खान पान का कुछ परहेज क्या करूं आप बता दीजिए।
ये खाते हो आप? हाँ यही खाते हैं। कि बारामासी क्या? बारामासी कि क्या बताएं, क्या बताएं? और भाई से बोले कि इन्हें कुछ खिलाओ, रुके ही जिंदा रखोगे क्या? के पकोड़े वकोड़े ये सब इन्हें थोड़ा थोड़ा खिलाना। खुद अरविंद भाई मेहता ने कहा, ये जो मंदिर है ना सितम्बर मंदिर है विराटन में, ये उनने बनाया है, उनके पिताजी वगैरह का योगदान है उसमें। वो बोला इन्हें कुछ खिलाना। फिर हम बहुत पीछे पड़े तो अपने भयानी है ना, विपिन भाई भयानी, भारती बहन भयानी, तो उनके उनने क्या किया कि हम उसको बुलाते हैं, किसको? डाइटिशियन को। तो उनने डाइटिशियन को बुलाया, वो तो डाइटिशियन को बुला करके हमारी डाइट नक्की कराई है, कितना खा सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं। तो जो उनने हमें लिस्ट बना के दी, मैंने कहा हमारा बाप तीन लोग में नहीं खा सकता इतना, तीन दिन में हम इतना नहीं खा सकते, सच बोला। आचार्य ये कहते हैं हम क्या परहेज करें, क्या परहेज करें, क्या परहेज करें। अब ये भ्रमदारी सुमित चंद पहुंच जाए, सुमित प्रकाश जी, के हमें परहेज बताओ सम्मा दर्शन की प्राप्ति के लिए, क्या परहेज करें हम? और देखें थोड़ा कम करो। जो उसकी भूमिका में होता है उतना तो तुम करते ही हो, अब हम तुमको और क्या कहें? तो हमारे बदले उधर ही उधर ही जाते, उधर ही जाते, परे 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 क्या करोगे परे? अपन जैनी लोग से इतने परहेजी है वास्तव में, जैनियों के आहार में ऐसा कुछ है ही नहीं, बस एक घी और शक्कर, बस दो चीजें, और कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे लिए छोड़ने लायक है। तो अभी मैं हाँ कहाँ चलता था अपना, तो पेज मेरा गड़बड़ हो गया है। हाँ कर्म का दोष दे दिया कि अनादि से क्या उन्होंने, अब वो कहते हैं अनादि से, और फिर टीका में अमृतचंद उससे 10 कदम आगे। टीका में क्या कहते हैं अमृतचंद, मैं भी मेरे में दर्द निकाल लू, एक मिनट गड़बड़ हो गया मेरा। हाँ अमृत में क्या कहते हैं सुनो, के अनादि से आत्मा का स्वभाव परिणमन है। अब ये स्वभाव परिणमन क्या रहे, वो राग को स्वभाव परिणम कहना चाहते हैं? थोड़ी शंका मैंने कल की थी, वो वैभाविक शक्ति। देखो जीव को अपने मिथ्यात्व का वेदन हो तो है। एक सवाल क्या गाथा में तो मात्र इतना ही कहा गया है कि मोह युक्त होने से आत्मा के अनादि से मिथ्या दर्शन अज्ञान और संयम भाव पाया जाता है, किंतु टीका में पहले यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से ही स्वाभाविक परिणाम करने की सामर्थ्य रखती है। मैंने स्वाभाविक प्रणमन करने के लिए स्वभाव से अनादि से उसको कोई टोनिक मोनिक देने की जरूरत नहीं है कि तब वो स्वाभाविक प्रणमन कर पाएगी, है ना? अतः आत्मा में भी स्वाभाविक प्रणमन करने की सामर्थ्य है। मैंने प्रणमन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा कि हमारा हार्ट चलता रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेटा जिस दिन से पैदा हुए वो हार्ट में चलने की सामर्थ उस दिन से ही पैदा होते से ही आई है, आप जानते हो? और ये जो किडनी किडनी के ऑपरेशन होते हैं ना, वो किडनी दान देते हैं, तो दो किडनी है तो हमें एक किडनी दान में दे देते हैं। तो डॉक्टर लोग क्या समझाते हैं, आप चिंता मत करना, अरे शरीर को जितनी जरूरत है किडनी की वो तो एक बहुत है, प्रकृति तिगुनी व्यवस्था करती है, क्या जितनी जरूरत है उससे तिगुनी व्यवस्था करती है, हार्ट को भी जितनी जरूरत है शरीर को उससे तिगुनी ताकत होती है हार्ट में, इसलिए वो 33% चलता है तब तक भी तुम जिंदा रहते हो, समझ में। हर अंग में प्रकृति ने ये व्यवस्था की है कि कहीं कोई कमी हो जाए तो तुम खत्म नहीं हो जाओ, तुगनी तुगनी ताकत है। ऐसे इस स्वभाव से ही स्वास्थ्य तो तुम जन्म से लेके पैदा हुए हो, ये तो कोई महाभाग्य होंगे हम जैसे जो बीमारी भी जन्म से लेके पैदा होते हैं, हर एक को थोड़ी वंशानुगत बीमारियां होती हैं। ये डॉक्टर ना तुम्हारा क्या नाम है, सालजिया कहीं तो बम्बई में कहा समझे ना बल्दी पे, उसने तो ये कहा कि तुम काहे को दुखी होते हो, तुम्हें जो बीमारी है उसमें तो कोई 30 वर्ष की उम्र के पार होता ही नहीं है, तुम अभी तक जिंदा हो, सोचने की बात तो ये क्यों है, क्या ऐसा बोला चालक जी, नाम बता रहा हूँ डॉक्टर का, क्या ये खुला ही नहीं है तो चलेगा कैसे, चार्ज तो घुसा दे चालू ही नहीं, इसमें जो फिर गया हमें तो गया दिखता है लाइट बंद चलेगी, ये गड़बड़ है कनेक्शन जो भी हुआ हो देख लेना, अभी तो सुनो शांति से नहीं गाय समझिए ना स्वाभाविक से, तो ये ऐसा है कि ये कहते हैं तुम्हारे में शुद्ध स्वभाव रूप प्रणमन होना ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा स्वभाव है, तुम इसकी चिंता मत करो, उसके लिए तुम्हें किसी दूसरे से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमारी क्या आदत पड़ गई है, कर्म के उदय से विकार हुआ और कर्म के क्षयोक्षम से विकार में थोड़ी छुट्टी मिल गई है, और कर्म के क्षय से पूरी छुट्टी मिल गई, वो जो स्वभाव का प्रकट हुआ वो भी कर्म के खाते है, मेहमानों के आने से परेशानी हुई थी और परेशानी मिट गई मेहमानों के जाने से, इसका सुख भी मेहमानों पर निर्भर और दुख भी मेहमानों पर निर्भर, ऐसा ना, इसलिए नियम सार में छायक भाव को भी विभाव कहा है, फिर इसी तर्क में क्योंकि उसमें निमित्ताधीनता है, कर्म गया तो कर्म गया तो कर्म गया तो वो भी कर्म से, एक कर्म के आने से और एक कर्म के जाने से तेरे से कुछ कुछ नहीं हुआ, यहाँ ये कह रहा है कि कर्म के जाने से केवल ज्ञान नहीं हुआ और कर्म के आने से राग नहीं हुआ, राग रूप प्रणमन होने की तेरे में विभाव स्वभाव नाम की एक शक्ति है, ये पर्यायगत स्वभाव है, ये बहुत कठिन बात है, सब गया है आगम में है, गुरुदेव सिंह ने रखा है, मेरी बात समझ गया ना, जिस प्रकार देखो एक उदाहरण से समझाते हैं, जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से ही अत्यंत निर्मल है, अब हमारे नियम है कपड़ा ये स्वभाव से ही निर्मल है ना, और इसे साफ करना हो तो क्या करो साबुन लगाओ, क्या करना साबुन लगाओ, अरे साफ तो है ही वो स्वभाव से, साबुन लगाओ क्यों कहते हो, मैल हटाओ कहो ना, तो कहते हैं तुम क्यों साबुन लगाने में मैल हटाने के चक्कर में पड़ते हो, बस मैल को देखो ही मत, और अंदर में जो निर्मल स्वभाव पड़ा है उसे देखो, लगे ना तुम्हें, तो फिर क्या होगा, वो अपने आप हट जाएगा। क्यों? ये अपने बाल बढ़ते हैं ना, क्यों? ये गाड़ी की टेक्नोलॉजी ना बनाते हो, और नहीं बनाते तो अभी तक घुटनों तक आ जाती। क्यों? सिर के बनाती है, माताएं मैंने सिर के बाल नहीं बनवाती है, तो इनके जमीन पे कहां पहुंच गए? अरे एक सीमा के बाद अपने आप बनना बंद हो जाएंगे, अपने आप गिरने लगेंगे, अपने आप कम टूटने लगेंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कोई के बाल जमीन पे छूने वाले नहीं है। अपना रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं बनाए जिंदगी भर, तो भाई बहुत से वक्त नाभि तक आए, बस उसके आने कहां बढ़ते हैं, अपने आप बढ़ना बंद कर देंगे। उन्हें स्वभाव में बड़ा हुआ है, देखो हटाने फटाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप हट जाएगा। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से ही अत्यंत निर्मल है और निर्मलता रूप प्रणमन होने में समर्थ है, उसे अपने निर्मल प्रणमन के लिए पर की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है, इसका अर्थ कर रहा हूं मैं। तथापि उसके स्वभाव से ही यह योग्यता भी विद्यमान है कि यदि उसे काले तमाल पुष्प के संयोग मिले तो वह काले रंग रूप परिणत हो जाता है, यदि उसे केले के हरे पत्ते पर रख दिया जाए तो वह हरा हो जाएगा, यदि उसे पीले वस्त्र के स्वर्ण पात्र में रख दिया जाए तो पीला हो जाएगा। अब क्या स्फटिक मणि का अर्थ समझते होंगे ना, जिसका वास्तव में खुद का कोई कलर नहीं होता, पर जो कलर आ जाए उस कलर में रंग जाता है, वो कलर नहीं होता माने निर्मल, माने कलर माने मेल, यहां कलर का नाम ही मेल है। हम साबुन लगाकर वस्त्र को निर्मल थोड़ी करते हैं, हम तो काला रंग मेटकर सफेद रंग में रंगते हैं। सावन लगाते हैं, उसे धो डालते हैं, फिर उस पर नील लगाते हैं, तिनोपाल लगाते हैं, क्यों भैया निर्मल निर्मल हो गया ना, हमें निर्मल क्या चाहिए, फिर नया मेल चढ़ाते हैं। अब तुमको वो काला मेल पसंद नहीं है, वही नीला मेल पसंद है, भाई बात तो इतनी है क्या नहीं है? तुमसे ज्यादा खराब हालत हमारी है, इसको थोड़ा बहुत माल मेल निकालते हैं और बाद में इस पे चावल चढ़ाते हैं, नहीं है समझ में, कलफ कलफ लगाते हैं ना, अब मुझे चावल से एलर्जी है, तो कुर्ता में चावल की कलफ लगी होती है, खुजली होने लगती है, मैं नहीं लगा सकता। मक्की की और कुर्ती से बनती है, मक्की की हो तो खुजली होने लगती है, मुझे एलर्जी, तो कहां शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, क्यों सुमित प्रकाश जी के सुनते हैं, और एक उदाहरण मिल गया तो घबराना नहीं तो देखो क्या कहते हैं, जिस प्रकार वो स्फटिक मणि स्वभाव से शुद्ध है, अब उस पर सोने के पत्र पे रख दो तो सुनहरा दिखता है, तमाल पुष्प की डांक लगा दो तो काला दिखता है, और चीज दूसरा क्या है, केले के पत्ते पे रख दो तो हरा दिखाई देता है, तो वो हरा हो गया है क्या? देखो कपड़े को लाल रंग में रंगो तो लाल दिखता है, ऐसा नहीं लिखा, कपड़े का उदाहरण दे दिया, क्योंकि उन्हें यह सिद्ध करना है कि जब आपको हरा दिख रहा है तब भी वो हरा नहीं है, निर्मल ही है, हरे मेल, हरा माने मेल, काला माने मेल, सुनहरी माने मेल, और निर्मल उसके विरुद्ध है, तो वो काम ऐसा उठा के बता देंगे, ऐसा देखो निर्मल है ना, तो ये रखा, अब ऐसा देखने लग गया, अभी रख, हम बार बार दिखा सकते हैं ना उठा उठा करके, रंग को कपड़े में से ऐसा बार बार हम नहीं कर सकते, इसलिए उदाहरण हमने इस पद कर दिया। लेकिन कपड़े की कोई हालत है कि कपड़ा सफेद और लाल रंग, तो जब वो लाल रंग में रंगा कपड़ा है तब भी कपड़ा तो सफेद ही है। जैसे स्फटिक मणि सुनहरी नहीं हुआ, काला नहीं हुआ, कब? जब वो सुनहरी और काला दिख रहा है तब। वो तो उसमें उसको ऐसा झलकाने की का स्वभाव है। ऐसे ये आत्मा राजरूप हुए ही नहीं है, ये तो कर्म की डांक लगती है। कर्म की डांक वो निमित्त हो गया ना, इसलिए कर्म का उदय हो गया निमित्त, तब वो ऐसा दिखता है नहीं। तो फिर वो ऐसा प्रणमन क्यों हुआ? तो कहते उसका प्रणमन स्वभाव है। फिर प्रणमन स्वभाव है लेकिन सुनहरी क्यों हुआ? तो कहते हैं कि अब जरा समझना, ये बहुत मर्म का बिंदु है कि उसका सुनहरी चीज के संयोग में आए तो सुनहरी दिखना स्वभाव है, ये उसका विभाग नहीं है। ये भी इसमें भी कर्म भरम कुछ नहीं है, ऐसा समझ जाए ना। वो सुनहरी दिखना भी उसका स्वभाव है। हाँ, सुनहरी हुए ही नहीं वो, कह रहे हैं। अब तुमको हमने 6 दफे ऐसा उठा उठा के बता दिया, अब तुमसे कहा कि अब जो सुनहरी दिख रहा है तब जो स्फटिक मणि कैसा है, बोलो कि ये तो निर्मल ही है, ये सुनहरी नहीं है। सुनहरी स्फटिक मणि आज तक न दुनिया में कभी हुए हैं और न कभी होंगे। ऐसे ही राग वाला आत्मा निगोद में भी नहीं हुआ और ना कभी होगा। तो संयोग से हो गया ना, अरे संयोग से हो गया तो खेल खत्म हो जाता। संयोग होने पर भी हुआ नहीं ना, दिखा और दिखना उसका सवाल है, हम क्या करें? वो उसमें भी पर का दोष नहीं है। तो फिर स्वभाव हो गया, तो राज रूप बनाने में स्वभाव हो गया। तो गुरुदेव बहुत पसंद करते थे, कर्म कृतई भावई असमाह तो भी प्रतिफल भी है ना। विवादी बाल अज्ञानियों को मालूम पड़ता है, विवादी बाली साना माने मूर्खों को दिखाई देता है, और वो भी उसमें निमित्त पर संग एव के परसंग ही निमित्त है। तो फिर प्रसंग में बहुत झगड़ा है। अब प्रसंग का अर्थ अकेला गुरुदेव ने सही किया, और सब जगह देख लेना वो अर्थ सही नहीं किया। तो वो कहते हैं कि पर ने किया, बस पर ने किया, पर ने कि पर की संगति ने किया। वो कहते हैं पर की संगति ने किया नहीं, पर के संग से वैसा दिखने रूप ये हुआ। हुआ तो यही कर्तृत्व उसके माथे नहीं है, क्योंकि उसके माथे कर्तृत्व ले जाने से अपने हाथ में कुछ नहीं रहता, फिर वो उसका मार्ग उसके हाथ चला गया। यदि कर्म ने हमें विकार कराया है तो विकार का नाश करने के लिए कर्मों के हाथ जोड़ो, उनकी पूजा करो, उनकी भक्ति करो। भैया छोड़ दे, हमने तेरे बाप का क्या बिगाड़ा। हमने उनकी की, और भगवान के पास जाकर के भी ऐसी बातें करी। मैं पंक्तियां बोलूंगा तो आप कहेंगे आप किसी के विरोधी हो, लेकिन किसी के नाम पर मत जाना। इनको ने कु बिगार मैंने कछु नाई कियो जू, बिन कारण महाराज बहु बेदे बेरे लियो जू। मैंने इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं किया था, इनको नेक बगार मैं कछु नहीं कियो जी, बिना कारण बहुत बेर ने लिया, मेरे से बदले की बात नहीं। दुष्ट ने देऊ निकार साधो ने को राखे लीजे, आगे की पंक्ति नहीं बोलूंगा। बोलना है, सुनो दुष्ट, बस दुष्ट तो गए ही भागो, तुम उन्हें दुष्टों को निकाल दो, निकलो तलवारो के दुष्टों को निकाल दो। दुष्टों को ही तो निकाल रहे, गलती खुद कर रहे, कर्म को दोष लगा रहे। कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई और अग्नि सहे धन घात लोह की संगति। अगली पंक्ति सुननी है,
बिन बे भूधर दास हे प्रभु ढील न कीजे।
ढील करने की तुम्हारी बहुत आदत है, जल्दी फटाफट निपटाओ। भूधर दास जी का कि उधर राज्य का विरोध करते हो, शर्म नहीं आती है? या हम किसी का विरोध नहीं करते, हम तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं। और भूदत्त जी के बाद दास जी के बारे में सुनना हो तो समझ बताऊं, हमारा बड़ो पंडित टोडामल व्यक्तित्व करते, उसमें हमें करीब 128 वर्ष पुरानी टोडामल जी के जमाने की 228 वर्ष पुरानी एक प्रति मिली है, वो चर्चा समाधान की। और चर्चा समाधान की प्रति में ये नीचे नोट लिखा है कि ये पंडित भूधरमल जी ने आगरा में ये लिखी और जयपुर में पंडित टोडरमल जी ने सभा में इसे बांची। क्या तो इसमें एक से लेकर इतने अंक तक के प्रश्न तो सही है और उसके आगे के प्रश्नोत्तर आगम से मिलते नहीं है, गलत है नहीं? इसलिए सुधी जन सोच समझ कर सुधार कर पढ़ना, ऐसा नोट लिखा मिला है, उसकी पेज की फोटो कॉपी मैंने उसमें छापी है और उसे छपे भी कल्प में हो गए, 71 में छपी थी। अब 71 से कितने साल हो गए, 39 साल, कोई पढ़ता ही नहीं है? अब मैंने लिखा ना उसमें क्लियर। अब बोलिए अब क्या करें, अत्यंत विनय पूर्वक जो बात लिखी है नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। और फिर जब नहीं कोई चक्कर हो तो अपने यहां पर एक खाता है ना, इसका व्यवहार नए का कथन है, वह खत्म, उस खाते में डाल देना, अगला खत्म। तो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार यह भगवान आत्मा स्वभाव से ही अत्यंत निर्मल है, निर्विकारी है, शुद्ध बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है और अपने स्वभाव रूप परिणमित होने में पूर्ण समर्थ है। तथापि अनादि से ही अन्य वस्तु भूत जड़ मिथ्यात्वादि कर्मों के संयोग से एक अन्य वस्तु भूत आत्मा का उपयोग भी मिथ्यात्वादि विकारी भावों रूप परिणमित हो रहा है, ये वर्तमान की परिस्थिति है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि का काले हरे पीले रंग रूप परिणमन उसका स्वाभाविक परिणमन नहीं है, औपाधिक भाव है, क्षणिक भाव है, उक्त विकृत परिणमन का स्फटिक मणि के भीतर प्रवेश भी नहीं है, उसी प्रकार यह मिथ्यात्वादि रूप परिणमन भी आत्मा का स्वाभाविक परिणमन नहीं है, औपाधिक भाव है, क्षणिक है, उक्त विकारों का आत्म स्वभाव के भीतर प्रवेश ही संभव नहीं। कहाँ? आत्मा में, आत्म स्वभाव में। इतना सब कुछ होने पर भी स्वभाव में प्रवेश संभव नहीं है, वर्तमान क्षण की अवस्था में तो वह स्फटिक मणि रंग बिरंगा हो ही गया है। उसी प्रकार स्वभाव से शुद्ध बुद्ध भी यह आत्मा क्षणिक अवस्था में तो मिथ्यात्वादि भावों रूप हो ही गया है, इस बात की गाथा में कह रहे हैं। आगे उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि आत्मा का परसंग से मिथ्यात्वादि विकारी भावों रूप परिणमन होना पर्यायगत स्वभाव है, दो तरह की योग्यता होती है, एक पर्यायगत योग्यता और एक त्रिकाली योग्यता, समझे ना। पर्यायगत स्वभाव है और यह परिणमन अनादि से हो रहा है, इसका परिणमन अनादि से है, इस कारण इनका अभाव नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। अब तुम घबराओगे अनादि से, भैया अनादि से हमें बहुत डर लगता है, तो बहुत पुरानी बीमारी है, तुम्हारी जड़ से बीमारी है, ये तुम्हारे पैतृक की है, माँ बाप को थी वहां से आई है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। हम एक हैं क्या, हमारी कोई गलती नहीं की, वो बीमारी हो गई, वो जन्म से ही है, चलो भैया क्या नहीं बैठो, अनादि से है लेकिन ठीक हो सकती है, जन्मजात बीमारी है लेकिन ठीक हो सकती है, राजा भी अनादि से हैं, इसलिए बहुत पुराने हो गए हैं, इसलिए अभी ठीक नहीं हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब 6 दिसंबर को हुआ था ना, गिरा से गिरी थी ना मस्जिद, गिरी थी बाबरी मस्जिद का, तो विवादित ढांचा भारतीय जनता पार्टी की भाषा में, क्यों तो मेरे को टीवी में बुलाया मुख्यमंत्री भरत सिंह शेखावत के तत्काल बाद, और मैंने कहा इस मामले को अदालत नहीं निपटा सकती, क्यों, अदालत में तो ये कानून है कि 12 बरस से जिसका जिसके पास कब्जा है वो उसकी, कागज पत्र तुम रख लो, तो 12 साल से किसका कब्जा है ये तो मालूम है, बोलो पूछो भारतीय जनता पार्टी वालों से, उन्हें मान्य है क्यों, नहीं निपटेगा ना अदालत में, तो ये नेताओं से नहीं निपटेगी, क्यों, जब उन्हें निपटाना ही नहीं है, जिस दिन निपट जाएगी उस दिन हिंदू वोट किस आधार पर मांगेंगे और मुसलमान वोट किस आधार पर मांगेंगे, इनको तो रखना है मुद्दा, हर साल 5 साल में एक दफा जिंदा रखना है, बस 5 साल तक साइलेंट चलने देगा, भगवान का जो कुछ हो सो हो, नेताओं की गलती रहेगी, भगवान अपने आ रही है 100-125 वर्ष से कैद में है ना, कहा अंतरिक्ष पारसनाथ में, चलती रहेगी अपने, उन्हें क्या निपटा, उन नेताओं से नहीं निपटेगी, तो किन से निपटेगी, तो मैंने कहा उन संतों से निपटेगी कि जिनका वास्तव में जनता पर कब्जा है और जनता जिनकी बात सुनती है, तो वो कैसे निपटेगी उसकी विधि में बता देता हूं, और मैंने बताई टीवी पे, तुम्हें सुनना, हमारे शास्त्रों में लिखी है कि अयोध्या 72 वो क्या है, क्या बोलते अपने प्योजन चौड़ी, और कितनी थी ऐसे इतनी लंबी चौड़ी थी, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी, जो 72 मील चौड़ी और 96 मील लंबी होती है, तो कितनी लंबी चौड़ी थी, इसमें मैंने कहा कौन माई का लाल कह सकता है कि राम का जन्म यहाँ पैदा हुए थे, एक कौशल्या के अलावा और कौन बता सकता है कि इस जगह जहां मंदिर बना है यहीं पैदा हुए, अयोध्या तो इतनी लंबी चौड़ी है, काय को जगह में, और राम के राज्य में राक्षस भी रहते थे जो उनके परम शत्रु थे, उन्हें जीत के आए थे, लेकिन सारे लंकावासियों को उन्होंने इस देश में से निकाल के बाहर नहीं किया था, क्यों, उन राम के राज्य में रहते थे क्या, नहीं कहते मुसलमानों को निकाला जा सकता है इस देश में, ज्यादा हल्ला गुल्ला करोगे तो नया पाकिस्तान बनेगा, एक कहीं बहुत बढ़िया मंदिर बना लो कहीं भी बढ़िया जगह चुन के, और एक कहीं बहुत बढ़िया मस्जिद बना दो बहुत बढ़िया दोनों जने मिलके क्या, और वहां पर एक बहुत बढ़िया कॉलेज बना दो जिसमें हिंदू मुसलमान की सबकी लड़कियां लड़के पढ़े, ये उपाय है, लेकिन ये साधु महात्मा जिनके हाथ में जनता है ये कर सकती है, क्योंकि ना इन्हें वोट चाहिए और ना इन्हें कानून की किताब देखना है, क्या समझ जाएगा, अरे भाई कैसे निपटेगी? ये वस्तु का स्वरूप आत्मा में क्या है, राग है कि नहीं है, ये घबराने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ रहा था मैं? इतना सब कुछ होने पर भी ये नहीं, इसका परिणाम अनादि से है, इसका अभाव नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं, क्योंकि अनंत आत्माओं ने इनका अभाव कर सिद्ध पद प्राप्त किया है और भविष्य में भी अनंत जीव सिद्ध पद प्राप्त करेंगे। अतः चिंता करने की कोई बात नहीं है, किंतु सजग होकर आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता अवश्य है। यहाँ यह एक बात विशेष जानने योग्य है कि यदि एक बार इन मिथ्यात्वादी भावों का नाश हो जावे तो फिर इनकी उत्पत्ति नहीं होती, जैसा कि पिछले कलश में कहा गया था कि एक बार हम बृजे। इसलिए चिंता की बात नहीं है कि हम बार बार नाश करेंगे और फिर बार बार ये पैदा हो जाएंगे। एक बार जल मूल से गया तो फिर अनंत काल तक तुम अनंत निश्चिंत होकर अनंत सुख भोगना रही है। अनंता अनंत काल यथा तथा सिद्ध।